समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात। आज की ये सुबह केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि भारत के साहस, संकल्प और सैन्य शक्ति को नमन करने का अवसर भी है। आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ है। वे अभियान जिसने दुनिया को भारतीय सेना के अदम्य साहस, सटीक रणनीति और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का परिचय कराया।
Like she said, today is the first anniversary of Operation Sindoor. The Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and also Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorists attacked against India that have been planned and directed. These steps came in the wake of barbaric Pahalgam terrorist attack in which 25 Indians and one Nepali citizen were murdered. Through this operation, India reiterated its policy of zero tolerance towards terrorism, asserting that India will identify, track and punish perpetrators of cross-border terror.
श्रोताओं, भारतीय सैनिकों के शौर्य, अनुशासन और मातृभूमि के प्रति समर्पण ने ये साबित किया कि देश की ओर उठने वाली हर चुनौती का जवाब भारत पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ देना चाहता है। इसी गर्व, उत्साह और देशभक्ति की भावना के साथ हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम आज सवेरे। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार वैष्णवी। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। दिस इज योर ओन मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड टुडे इज 7th ऑफ मे। इट्स एक्सट्रीमली स्पेशल फॉर मल्टीपल रीजंस, बी इट द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर और मल्टीपल थिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग इन इंडिया। And we'll be talking about who has taken birth on this particular day and who left for their heavenly abode on this particular day and a lot more. So let's begin our program with the news headlines. Defence Minister Rajnath Singh and Chief of Defence Staff General Anil Chauhan will grace the second edition of Joint Commanders Conference in Jaipur today. The two-day conference on the theme Military Capability in New Domains assumes significance as it coincides with the first anniversary of Operation Sindoor. The Defence Ministry said that the conference will provide a pivotal forum to evaluate the challenges in emerging domains of cyber, space and cognitive warfare and chart a roadmap for capability development for resilient and future-ready force with a decisive edge. The conference will also feature a demonstration of futuristic applications developed in-house and release of new doctrines pertaining to future warfare concepts and operational strategies.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद के शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है।
And now let's move towards a very heart-touching news story. The Ministry of Health and Family Welfare has highlighted a remarkable case of multi-organ donation at Command Hospital Chandi Mandir in Haryana, where a family of a brainstem dead woman saved 4 lives through organ donation. The Health Ministry said that the 41-year-old woman, wife of a serving Indian Army colonel, was declared brainstem dead on 2nd of May following a severe brain hemorrhage. In a courageous decision amid personal grief, her husband and 2 daughters consented to donate her organs, including the heart, kidneys, liver and pancreas, enabling life-saving transplants for 4 critically ill patients, including a 14-year-old boy. And this is a wonderful case, and this is an inspiration to multiple more people. And we also have another news as part of our series People's Padma on Akashwani. In our upcoming episode, we speak to Shiv Shankari, an eminent writer. She'll be honored with the prestigious Padma Shri.
When I heard the news, the first reaction was gratitude. Gratitude to God, gratitude to my parents. I was a Sanskrit student, I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals. There is no writer's block. If my thoughts are ready, I'm ready to write. If the thoughts are not ready, however much you try, that quality will not be there. For me, there is no lucky pen, no lucky sari, no lucky table. I'm not superstitious at all.
To listen to this conversation, tune in to 100.1 MHz Akashwani Gold today morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
तन्वी, कुछ खेल खबरों की भी बात कर लेते हैं। दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होगी। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल इस कार्यक्रम की घोषणा की थी। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। 7 दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के रोमांचक मुकाबले आयोजित होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि आने वाले समय में टिकटिंग, स्वयंसेवकों की भागीदारी और विस्तृत खेलों की समय सारिणी से संबंधित जानकारियां भी जारी की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया सहित 35 से अधिक कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह प्रतियोगिता राजधानी के आधुनिक खेल सुविधाओं, बेहतर बुनियादी ढांचे और विश्व स्तरीय आयोजन क्षमता को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगी। वहीं दिल्ली कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता भारत के उभरते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मंच पर उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। समाचार कक्ष से नितिका गुप्ता।
आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। श्रोताओं, अब बढ़ते हैं देश के प्रमुख महानगरों की ओर, जहां से जानेंगे शहरों की हलचल और दिन भर की कुछ खास गतिविधियां। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ही। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों का वेतन 20,000 से 23,000 रूपये से बढ़ाकर अब प्रति माह 38,100 रूपये हो गया है। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 784 केंद्रों पर कार्यरत शिक्षकों का वेतन 21,000 रूपये से बढ़ाकर 35,420 रूपये प्रति माह कर दिया गया है।
Let's move towards Chennai. The Madras High Court has said that engineering degrees obtained from deemed to be universities in period without AICTE approval are not valid. A division bench of Justice S.M. Subramaniam and Justice K. Surendra passed the order on a review application moved by the Tamil Nadu Transport Corporation seeking review of an order passed by the court on 25th of June last year. The issue pertains to pleas moved by three employees of the corporation seeking to include their names in the seniority list of assistant engineers taking into consideration their BE degrees.
महाराष्ट्र के मत्स्य और बंदरगाह मंत्री नीतीश राणे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुंबई महानगरीय क्षेत्र में जल परिवहन सेवाओं के लिए एकीकृत ऑनलाइन टिकटिंग प्रणाली को जल्द शुरू किया जाएगा। श्री राणे ने कहा कि इस पहल से टिकट के लिए लगने वाली लंबी कतारें खत्म होगी, प्रक्रियाएं तेज होंगी और बढ़ती यात्री मांग के बीच पारदर्शिता में भी सुधार आएगा। वहीं महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने घोषणा की कि नगर निगमों और नगर परिषदों में शामिल किए गए गांवों में पारंपरिक 7x12 भूमि अभिलेखों की जगह अब प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। इस निर्णय का उद्देश्य तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों के निवासियों को लाभ पहुंचाना और भूमि दस्तावेजों को शहरी व्यवस्था के अनुरूप बनाना है।
And about Bengaluru, a month after towing for illegal parking resumed, Bengaluru Traffic Police has removed nearly 600 vehicles, mostly cars, bringing some relief to congestion across key city roads. The drive is currently active in Central, West and North divisions with 6 tow trucks and authorities plan to expand operations to more areas soon. Backed by the Greater Bengaluru Authority, each towing unit operates with a small crew under police supervision. Vision ensuring coordinated enforcement. Officials said the strategy is flexible with tow trucks deployed based on real-time congestion. Focus areas include busy CBD stretches and major corridors like the Outer Ring Road where wrongly parked four-wheelers frequently disrupt traffic flow.
वहीं कोलकाता की ओर रुख करते हैं। राज्य के बदलते राजनीतिक माहौल के बीच पश्चिम बंगाल पुलिस निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत पश्चिम बंगाल पुलिस वेलफेयर कमेटी से जुड़े पुलिस कर्मियों और सहायक कर्मचारियों को तुरंत उनकी मूल सरकारी जिम्मेदारियों पर वापस भेजने का आदेश दिया गया है। पश्चिम बंगाल के डीआईजी द्वारा जारी ये आदेश राज्य के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों और विशेष इकाइयों जैसे सीआईडी, एसटीएफ और विजिलेंस कमीशन को भेजा गया है।
And about Hyderabad, a study by researchers at the CSIR Center for Cellular and Molecular Biology found that two snake species, the spectacled cobra and the Indian rat snake, accounted for 76% of all rescues across 232 identified hotspots in the Hyderabad metropolitan region. The study also revealed that 54% of recorded rescues involved venomous species and these snakes appear to be particularly well adapted to densely populated urban environments, highlighting their ecological flexibility. These findings contribute significantly to understanding snake ecology in densely populated areas and help predict future human-snake interactions. So these were the updates from 6 metro cities.
और अब बात आज के मौसम की। राजधानी दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और बिजली कड़कने की संभावना है। शहर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और बात करें कोलकाता की, तो आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, साथ ही बिजली कड़कने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
And Chennai is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The minimum temperature was 27 degrees and maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is also expected to have thunderstorm accompanied with lightning or gusty winds of 30 to 40 km per hour. The minimum temperature was 22 degrees and maximum will be around 34 degrees. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with the possibility of rain or thunderstorm or even dust storm. The temperature will hover somewhere between a minimum of 28 degrees and a maximum of 40 degrees Celsius. And now moving towards our next section, what all happened on this particular day in history? Let's talk a particular day, and today is World Athletics Day. It's being celebrated today globally, and this day promotes the sport of athletics and encourage physical fitness among youth worldwide. The observation of this day was started in 1996 by the International Association of Athletics Federation, also known as World Athletics. Its main objective was to connect students to track and field sports at school and even college level. Now, if we talk about sports and athletics, do you think it is recommended for everyone to give 1 hour at least to their bodies?
जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है आजकल के समय में, जब हम स्पेशली हर समय डेस्क जॉब पे ही ज्यादातर लोग रहते हैं या बच्चे भी अधिकतर फोन में ही लगे रहते हैं, तो मुझे लगता है बाहर निकलना बहुत जरूरी है और बाहर जाके किसी ना कोई ना कोई तरह की एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए.
ट्रू, बी इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज, बी इट स्पोर्ट्स, बी इट फिटनेस, बी इट जिम, एनीथिंग एट ऑल, बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर ओन फिटनेस. एंड नाउ व्हाट ऑल हैपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे, लेट्स बिगिन विद द ईयर 1663. द थिएटर रॉयल, नाउ नोन एज द ड्रूरी लेन थिएटर, वॉज ओपन्ड इन लंडन एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंग्लिश थिएटर स्टिल इन यूज.
1824 में जर्मन संगीतकार लुडविग वान बीथोवन की प्रसिद्ध नवमी सिम्फनी का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन वियना में हुआ. ये रचना आज भी विश्व संगीत की महानतम कृतियों में गिनी जाती है.
इन द ईयर 1849 बेथून कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन कोलकाता फॉर वुमेन्स एजुकेशन. इन द ईयर 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वॉज अवार्डेड द पेटेंट फॉर हिज इन्वेंशन विच ही नेम्ड द टेलीफोन. इन 1907 द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रामवे service commenced in Mumbai. And in 1946, Sony Corporation, a major Japanese manufacturer of consumer electronics products, was founded by Ibuka Masaru and Morita Akio.
वहीं 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद का पहला सत्र आयोजित हुआ, जिसमें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया. वहीं 1998 में स्टीव जॉब्स के नेतृत्व में एप्पल ने आई मैक कंप्यूटर पेश किया, जिसने व्यक्तिगत कंप्यूटिंग की दुनिया में नया बदलाव लाया.
And let's go a little back, talk about 1960. The Border Roads Organization, BRO, was established, crucial for strengthening road infrastructure in India's border areas. And in the year 1973, the foundation stone was laid at Itanagar, the new capital of Arunachal Pradesh.
वहीं 2000 की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन ने रूस के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था, जिससे देश की राजनीति में एक नया दौर शुरू हुआ.
इन द ईयर 2004 मरीन बायोलॉजिस्ट रिचर्ड थॉम्सन पब्लिश्ड एन आर्टिकल इन द जर्नल साइंस डिटेलिंग द ट्रबलिंग अमाउंट ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स एंड फाइबर्स दैट ही एंड हिज टीम हैव डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड्स ओशंस एंड मरीन हैबिटेट्स. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट
अल्लूरी सीताराम राजू. आज उनकी पुण्यतिथि है. वे आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा चेहरा थे. उन्होंने रामपा विद्रोह का नेतृत्व किया और गुरिल्ला युद्ध शैली अपनाकर ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी. राजू जी केवल एक सेनानी ही नहीं बल्कि आदिवासियों के हक के लिए लड़ने वाले नेता भी थे. उनके बीच रहते, उनकी समस्याओं को समझते और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे. ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयास करती रही और अंततः उन्हें गिरफ्तार कर गोली मार दी गई. उनका बलिदान आज भी साहस और देशभक्ति की मिसाल है.
And today is the birth anniversary of K.N. Shankar, a space scientist from India. He was the director of ISRO's Space Application Center, Ahmedabad, and ISRO Satellite Center, Bangalore. He was the director of Satellite Communications Program Office and Program Director, INSAT, and was looking after overall planning and direction of communication satellite program. His work in the field of transponder design and development led to a boost in India's communication satellite technology. For his contribution in the field of satellite technology, Shankar was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2004. He is said to be the person who conceptualized Chandrayaan, India's first venture to moon.
कुछ आवाजें वक्त के साथ धीमी नहीं पड़ती, बल्कि हर दौर में और गहरी होती चली जाती है. ऐसी ही एक पहचान है प्रेम धवन, जिनके गीत आज भी दिलों में वैसे ही गूंजते हैं जैसे पहली बार सुने गए हो. प्रेम धवन हिंदी सिनेमा के उन खास गीतकारों में रहे जिन्होंने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि उन्हें जिया भी.
उनके गीतों में देशभक्ति की सच्ची भावना और इंसानी जज्बात की गहराई साफ महसूस होती है। ऐ मेरे प्यारे वतन हो या कर चल हम फिदा, उनके लिखे हर गीत में एक सादगी है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। वे सिर्फ गीतकार ही नहीं बल्कि संगीतकार और नृत्य निर्देशक भी थे जिन्होंने सिनेमा को कई यादगार पल दिए। 2001 में उनका निधन हुआ लेकिन उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही जीवित हैं। हर बार सुनने पर कुछ नया एहसास छोड़ जाती है। और अब इन्हीं भावनाओं को महसूस करने के लिए आइए सुनते हैं प्रेम धवन का लिखा गीत।
ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी
Vaishnavi, these two songs have made the name Prem Dhawan great. And we know Prem Dhawan for his patriotic songs, especially for the lyrics and compositions for the 1965 Manoj Kumar starrer Shaheed. And Prem Dhawan, apart from his career as a lyricist and composer, do you know he even acted in two films? The one is Lajawab, that came in 1950, and the other is 1959 Goonj Uthi Shehnai. He also worked as a choreographer for seven films, and Vachan was the first film as his choreographer and lyricist. The Government of India awarded Prem Dhawan the civilian honor of Padma Shri in 1970, and he also won the National Film Award for Best Lyrics in 1971 for the film Nanak Dukhiya Sab Sansar. Moving towards our next personality in this list, we are talking about Bhuvaneshwar Mishra. Today is his death anniversary. An Indian music director, a noted composer of Odissi music, primarily for Odissi dance, and a classical violin player. And he was exposed to and developed an inclination towards classical Odissi music at a very young age. Later, he acquired training and proficiency in Odissi, Hindustani and Carnatic styles of playing the violin. In All India Radio Cuttack, he came under the influence of Shinghari Shyam Sundarkar, Kashinath Pujapanda, and Balakrishna Dash, and many more people. He teamed up with Pandit Hari Prasad Chaurasia to score music for Hindi and even Odia films.
Tanvi kabhi kabhi sangeet bolta nahi hai, bas mehsoos hota hai. Aur us ehsaas ko suron mein dhalne wale kalakar the Vanraj Bhatia. वनराज भाटिया भारतीय सिनेमा के उन संगीतकारों में रहे जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनका संगीत साधारण होते हुए भी बेहद खास था, धीमा, गहरा और असरदार। तमस जैसे धारावाहिक में भी उनका संगीत कहानी की भावनाओं को और गहरा कर देता है। उन्होंने फिल्मों के अलावा विज्ञापन जगत में भी कई यादगार जिंगल्स तैयार किए। उनका संगीत ऐसा था जो धीरे धीरे दिल में जगह बनाता है और लंबे समय तक साथ रहता है। 2021 में उनका निधन हुआ लेकिन उनकी धुनें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हर बार सुनने पर एक नया एहसास छोड़ जाती है। आइए अब आपको सुनाते हैं वनराज भाटिया के संगीत का ये खूबसूरत हिस्सा।
तुम्हारे बिन जीना लगे घर में बलम जी, तुमसे मिला के
अब हम बात करेंगे नारायण सुब्बा राव हार्डिकर के बारे में, जिनका जन्म आज ही के दिन 1889 में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख सेनानी थे। उन्होंने हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना की जो युवाओं को अनुशासन, संगठन और देश सेवा के लिए तैयार करने का एक सशक्त मंच बना। हार्डिकर जी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका मानना था कि एक मजबूत राष्ट्र के लिए जागरूक और प्रशिक्षित नागरिक आवश्यक है। उन्होंने समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी सोच और कार्यशैली ने देश के युवाओं को नई दिशा दी थी। पन्ना लाल पटेल गुजराती साहित्य के उन लेखकों में शामिल है जिन्होंने गांव देहात की जिंदगी को शब्दों में जीवंत कर दिया। आज ही के दिन 1912 में जन्मे पन्नालाल पटेल की रचनाएं आम इंसान के संघर्ष, प्रेम और सामाजिक परिस्थितियों को बेहद सजीव तरीके से प्रस्तुत करती है। उनकी प्रसिद्ध कृति मनवीनी भावाई के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी भाषा सरल थी लेकिन असर गहरा, जो पाठकों को सीधे कहानी से जोड़ देती है। उन्होंने साहित्य को समाज का आईना बनाया। पन्नालाल पटेल की लेखनी आज भी पाठकों को सोचने और महसूस करने पर मजबूर करती है। 1910 में जन्मे शांति देव घोष कला की उस परंपरा के वाहक थे जो सुर, ताल और अभिनय को एक साथ जोड़ती है। वे रविंद्र संगीत के प्रमुख उस्तादों में गिने जाते हैं। शांति निकेतन से जुड़े रहते हुए उन्होंने संगीत और नृत्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने कई नृत्य नाटिकाओं का निर्देशन भी किया था।
চৈত্র রজনী আজ বসে আছি আকাপন বুঝে দিল দেখাবনে মনে।
श्रोताओं, अभी जो आप ये सुन रहे थे, रविंद्र संगीत था। और तन्वी बात करें तो भारत सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय विद्वान घोषित किया गया था। संगीत में उनके योगदान के लिए वर्ष 2002 में भारत सरकार ने उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया था।
Wonderful, a great personality. I am definitely sure about it. So now let's talk about the next person, and today is the birth anniversary of Okay, let me just wait here. Mm-hmm. And before I take the name of this personality, let's mm-hmm. just play a quiz, shall we, Vaishnavi?
Ji, bilkul.
Okay, and I'll ask you a few questions. Mm-hmm. Now, who is known as Gurudev?
Rabindranath Tagore.
Right. Ji. Who is the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913?
Rabindranath Tagore.
And who wrote the National Anthem of India?
Rabindranath Tagore.
Who founded Vishwa Bharati University in Shantiniketan?
Rabindranath Tagore.
Who has composed over 2000 songs called Rabindra Sangeet?
Obviously, Rabindranath Tagore.
Absolutely, and there is the answer. Today is the birth anniversary of Rabindranath Tagore. He was born on 7th of May, and in the Indian state of West Bengal and even Bangladesh, it is celebrated in early May on the 25th day of the Bengali month of Baisakh. Since Tagore was born on this day of the year 1268 of the Bengali calendar and not the 1861 AD. So Rabindranath Tagore's birth anniversary is widely celebrated on 9th of May, which is day after tomorrow, mm-hmm. which is 25th Baisakh in Bengal, marking his 165th birthday in 2026. Though born on 7th of May in 1861, the celebration typically falls on 9th of May based on Bengali calendar. And you know, in the recently won elections by the Bharatiya Janata mm-hmm. Party in West Bengal, the oath-taking ceremony of the new Chief Minister of West Bengal will take place on this particular day, that is 9th of May, Rabindra Jayanti. So today is special, and 9th May is equally special as it's going to bring a new change in West Bengal. So let's hear our Honorable Prime Minister Narendra Modi talking about Gurudev.
Gurudev ne hame swadeshi samaj ka sankalp diya. Wo hamare gaon ko, hamari krishi ko atmanirbhar dekhna chahte. Wo vanijya aur vyapar ko atmanirbhar dekhna chahte. वो आर्ट और लिटरेचर को आत्मनिर्भर देखना चाहते। उन्होंने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की बात कही।
गुरुवर टैगोर ने अपनी कविता नूतन जोगेर भोर में कहा, हर आगे बढ़ने वाले कदम पर घोषणाद होगा, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। अब देरी मत करो, सोचिए ये कितना बड़ा मंत्र है, दौड़ते पांव ही नया रास्ता बना देंगे। जब इतनी बड़ी प्रेरणा हमारे सामने है तो रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
श्रोता, रविन्द्रनाथ टैगोर को दो देशों के राष्ट्रगान लिखने का गौरव प्राप्त हुआ था। उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला भी रचा था। सिर्फ साहित्य ही नहीं, शिक्षा जगत में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा था। शांति निकेतन की स्थापना कर उन्होंने शिक्षा को एक नई सोच दी, जहां प्रकृति के बीच सीखने की परंपरा विकसित हुई। आज भी उनकी कविताएं और गीत दुनिया को ये सीख देती हैं कि चुनौतियों का पहाड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उनका सामना करो भले ही अकेले क्यों ना हो।
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
और इसी खूबसूरत गीत के साथ श्रोताओं कार्यक्रम आज सवेरे में आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।
যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ